आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशी भारद्वाज और मैं आपके साथ आपकी 9th क्लास की साइंस बुक को डिस्कस करती हूँ। आज हम आपके साथ इस ऑडियो में चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का थर्ड पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लास्ट पार्ट में हमने इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बीच के लिंक तक समझा था कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बीच क्या लिंक, और हम इस कंक्लूजन पे आए थे कि जितना ज्यादा कोई ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव होगा या ओल्डर होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर उतना ज्यादा सिंपलर होगा, और जितना कोई ऑर्गेनिज्म यंगर है या वो नया ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी कंपोजिशन उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो यही लिंक है इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बीच में। नाउ अब आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 83 पर दिए हुए इंडेक्स क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन ऑन पेज नंबर 82 पर जो पहला इंडेक्स क्वेश्चन है उसको करते हैं। व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव होते हैं और उनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो ऑर्गेनिजम्स एडवांस्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि देखिए जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल है। बेसिक सेल अरेंजमेंट, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर, ये सभी चीजें बहुत सिंपल हैं, और जो डिविजन ऑफ लेबर है वो नहीं मिलता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में। और अगर हम एडवांस ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनके पास मिलियंस ऑफ सेल्स है, मीन्स वो मल्टी सेलुलर है, डिविजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, और स्पेसिफिक ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है जो कि पूरा डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि मैमल्स में देखने को मिलता है। तो ये है आपका आंसर, इसे आप नोट डाउन करेंगे। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिबिट ए वेरी सिंपल एंड बेसिक सेल अरेंजमेंट। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके पास बहुत सिंपल और बेसिक सेल अरेंजमेंट है, कॉमा मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर, एंड नो डिविजन ऑफ लेबर इज ऑब्जर्व्ड। तो उनके पास सिंपल बेसिक सेल स्ट्रक्चर है, सेल अरेंजमेंट है, सिंपल मैकेनिज्म है और सिंपल स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ कोई डिविजन ऑफ लेबर ऑब्जर्व नहीं किया गया है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में। अब एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स ऑन द अदर हैंड आर द ऑर्गेनिजम्स पोजेसिंग मिलियंस ऑफ सेल्स दैट आर ग्रुप्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज सच एज मैमल्स। सो दूसरे तरफ अगर हम एडवांस ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनके पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि मिलकर एक ऑर्गन को बनाती हैं, और ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम को बनाती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसा कि मैमल्स के अंदर देखा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विल एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, व्हाई? क्या एडवांस ऑर्गेनिजम्स भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरह ही होते हैं? ऐसा क्यों? सो जनरली जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को हम एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, इस वजह से ये सेम होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जो सेल अरेंजमेंट है और सेल नंबर्स हैं वो मिलियंस में हैं, जिस वजह से वो ऑपरेट कर सकते हैं यूनिकली। दैट्स व्हाई जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को एडवांस ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर द सेम एज एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडवांसमेंट लीड्स टू मल्टीपल सेल अरेंजमेंट्स दैट ऑपरेट यूनिकली। तो जो कॉन्सिक्वेंस है उनके एडवांसमेंट का वो ये है कि उनके पास मल्टीपल नंबर में सेल्स हैं, और सेल्स का क्या है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, मीन्स वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू बाद में मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ऑर्गन्स आपस में मिलकर फॉर्मेशन कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम का, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर यूनिक ऑपरेशंस। मतलब वो यूनिकली अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई जो एडवांसमेंट आया है वही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का रीजन है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाउ अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमें अब हायरार्की पढ़नी है क्लासिफिकेशन की. सो टॉपिक 7.3 ऑन पेज नंबर 83, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स. सो हायरार्की का मीनिंग क्या होता है, पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज हायरार्की. मेनी ऑफ अस प्रोनाउंस इट एज हायरार्की और कुछ लोग इसे हायरार्की भी पढ़ते हैं. सो हायरार्की क्या है? अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी. ये एक सिस्टम है जिसमें मेंबर्स को जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं या किसी किंगडम के हैं उनको रैंक दी जाती है उनके स्टेटस के या उनकी अथॉरिटी के अनुसार. जैसे सबसे पहले क्या होगा, उसको लोअर डाउन मतलब नीचे से उसको स्टार्ट करते हैं कि पहले नीचे वाले का स्टेटस इतना होगा, उसके ऊपर उससे ज्यादा होगा. सो दिस इज कॉल्ड हायरार्की या हायरार्की. ओके, ये जनरली एक अरेंजमेंट होता है आइटम्स का जिसको अबव और बिलो इस तरीके से या सेम लेवल करके इसको अरेंज किया जाता है और एक पिरामिड लाइक शेप से जनरली इसको हम लोग डिनोट करते हैं या ड्रॉ करते हैं. सो अब हमें वही पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ग्रुप्स जो हमने एनिमल्स के या फिर लिविंग फॉर्म्स के जो ग्रुप्स बनाए हैं उनका हायरार्की क्या रहा है, वही अब हमें पढ़ना. Biologists such as Ernst Haeckel, 1894, Robert Whittaker, 1959, and Carl Wurz, 1977, have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. So, ये तीन scientists हैं, इनके names बहुत important हैं क्योंकि इन तीनों ने ही मिलकर सबसे पहले living organisms को classify किया. तीनों ने अलग अलग years में इनको किया है, ये नहीं है कि एक साथ किया, but ये उन्होंने सबसे पहले try किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉड कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करें. तो इन ब्रॉड कैटेगरीज को नाम दिया गया किंगडम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. किंगडम्स, इन्होंने किंगडम्स में क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैज फाइव किंगडम्स. सबसे पहले जो विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया उसके अंदर पांच कैटेगरीज थे या पांच किंगडम्स थे. तो इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन नाम दिया जाता है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, सबसे पहले साइंटिस्ट विटेकर. विटेकर प्रपोज्ड हैज द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैज फाइव किंगडम्स, नेमली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया एंड इट इज वाइडली यूज्ड. सो ये इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें पांच किंगडम्स हैं, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाय किंगडम, प्लांटे किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम. इन्हें ऐसे भी पढ़ सकते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाय, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. और इसको उस समय पर बहुत ज्यादा यूज किया गया था. दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, mode and source of nutrition and body organization. So ये जो groups उन्होंने बनाए वो उनके cell structure के basis पे बनाए. उनका mode of nutrition क्या है, source of nutrition क्या है, means वो खाना कैसे लेते हैं, वो carnivorous हैं, वो photosynthetic हैं, वो herbivores हैं, omnivores हैं, या फिर उनका source of nutrition क्या है, वो खाना कहाँ से लेते हैं, प्लस उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है. सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने लास्ट ऑडियो में डिस्कशन किया हुआ है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल पर है, टिश्यू लेवल पर है, ऑर्गन लेवल पर है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है. ठीक है, तो वही है यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. द मॉडिफिकेशन वूज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज. सो एक और साइंटिस्ट जो वूज ने, कार्ल वूज, 1977 में उन्होंने भी डिवाइड कर दिया, किसको फर्दर डिवाइड कर दिया उन्होंने, मोनेरा को, किंगडम मोनेरा को उन्होंने डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया जिसको आर्की बोला गया और यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया में उसको सब डिवाइड कर दिया, मींस टू कैटेगरीज और डाल दी मोनेरा. फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम. बाद में और इसको क्लासिफाई किया गया सब ग्रुप्स में जैसे कि आगे आपको दिखाया गया है. तो सबसे पहले किंगडम, ये स्कीम बनाई गई, ये वेरियस लेवल्स हैं, जैसे लेवल होता है ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसी तरीके से ये लेवल्स बनाए गए। तो सबसे पहला लेवल जो है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो है किंगडम, फिर किंगडम के बाद आएगा फाइलम। तो फाइलम जो वर्ड है वो यूज होगा केवल एनिमल्स के लिए, फाइलम के अंदर एनिमल्स की स्टडी होगी। डिविजन, डिविजन आता है प्लांट्स के लिए, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। जो एक रिमेम्बरिंग पॉइंट है यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो स्पीशीज, सबसे ज्यादा जो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे या सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, मोर स्पेसिफिकली हमें ये कहना चाहिए, वो होंगे किंगडम में, और सबसे कम ऑर्गेनिजम्स होंगे स्पीशीज। तो ये आपको याद होगा। दस, बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ अ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स, वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज आवर स्पीशीज। तो इस तरीके से जब हम सेपरेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को उनके हायरार्की, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पर छोटे छोटे ग्रुप्स में, तो हम एक कहाँ पर पहुंच जाते हैं, बेसिक यूनिट पर पहुंच जाते हैं, और ये बेसिक यूनिट कहलाती है स्पीशीज। स्पीशीज बेसिक यूनिट है इस क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज बेसिक यूनिट? बेसिक यूनिट होती है जो आधार हो किसी चीज का, जिससे शुरुआत हो, ये कह सकते हैं। जब भी हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो हम पहले कोशिश करते हैं कि इसके छोटे, जिसका मूल रूप है, जो मूल है, पहले हम उसको पढ़ें, जो छोटी चीज है उसको समझें, तब जाके हम धीरे धीरे उसके बारे में ज्यादा जान पाते हैं। तो इसीलिए स्पीशीज क्या है, ये सबसे बेसिक यूनिट है। देन आता है जीनस, देन आता है फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिविजन या फाइलम, और उसके बाद किंगडम। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन का हायरार्की है जो आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में इसका ऑर्डर पूछा जाता है, और उस ऑर्डर में कई बार जंबल्ड ऑर्डर आपको लिख के दिया जाता है, और आपको उसको सही फॉर्म में या सही ऑर्डर में लिखना होता है। कई बार ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाता है, तो आपको ये वाला सीक्वेंस याद होना चाहिए। सो स्पीशीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। सो व्हाट ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज? सो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसे हम कहेंगे कि ये सेम स्पीशीज के हैं? ब्रॉडली A species includes all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. So, broad sense में अगर बोलें तो species वो हैं, close species वो हैं, जिसके अंदर वो सभी organisms आते हैं जो इतने तो similar हो कि आपस में breed कर सकें और अपने young ones को create कर सकें। The important characteristics of the five किंगडम्स ऑफ विटेकर आर एज फॉलोज। अब फिर विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं विटेकर क्लासिफिकेशन, ठीक है? सो उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, एक एक करके हम उनका, जो उन्होंने किंगडम्स बनाए उसको ही एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मोनेरा, 7.3.1 मोनेरा। These organisms do not have a defined nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body designs. So, ये जो organisms हैं, इनके पास defined nucleus नहीं। अगर nucleus भी है, तो वो फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, defined nucleus नहीं। और ना ही organelles। What are organelles? Organelles के बारे में हमने cell chapter में, tissue chapter में अच्छे से पढ़ा है। ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल्स के अंदर कॉम्पोनेंट्स, और वो कॉम्पोनेंट्स सेल को उसके वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? सेल ऑर्गेनेल्स का एक एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सभी होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, एंड सो ऑन। सो हम मोनेरा पढ़ रहे हैं कि मोनेरा के पास कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल्स नहीं होते, नॉट डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन। साथ ही साथ ऐसा कोई भी मोनेरा नहीं है जिसके पास मल्टी सेलुलर बॉडी हो, यानी वो सिंगल सेलुलर है, उसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है और उसी एक सेल से उसका सेल, उसका जो बॉडी है वो बना हुआ है, ओके? ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ साथ वो डाइवर्सिटी भी शो करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट। कुछ उनमें से मोनेरन्स ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं। सो इस सेल वॉल के बारे में भी हमने सेल चैप्टर में पढ़ा, इसीलिए जो इससे पहले के चैप्टर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें पहले इसीलिए पढ़ाया गया है ताकि आप इस वाले चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था। सो सेल वॉल जो होती है ये एक स्ट्रक्चरल लेयर है जो कि सराउंड करती है कुछ सेल्स को और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है और कई बार रिजिड भी होती है। जनरली ये किस में मिलती है, ये होती है बैक्टीरियाज में, फंजाई में, प्लांट्स में और एल्गी। एनिमल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल्स नहीं होते। सो अभी हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे कि मॉनरेंस के पास, कुछ ऐसे मॉनरेंस हैं जिसके पास सेल वॉल है और कुछ के पास नहीं है। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन बॉडी डिजाइन हेयर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाँ, तो इसका इफेक्ट होता है कि उस सेल के पास सेल वॉल है या नहीं है, उसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी बॉडी डिजाइन पर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी ईदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड ऑटोट्रॉफिक और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरमेंट हेटरोट्रॉफिक। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। सो यहाँ पर बोला गया है कि अब तक तो बेसिकली याद रखिए कि हम सिर्फ दो ही आधार पर, दो ही बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला ये कि उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है। अगर सेल स्ट्रक्चर को जान लिया तो उसकी नंबर ऑफ सेल्स क्या है, वो मल्टी सेलुलर है या सिंगल सेलुलर है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस कैसा है। जब इसको जान लेंगे, जब हम सेल के स्ट्रक्चर पर जान लेंगे, देन हम आएंगे किस पर, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझकर हम फिर ये क्लासिफिकेशन को समझ पाते हैं कि हाँ ये वाला किंगडम उस वाले किंगडम से इस तरीके से डिफरेंट है। अब हम बात कर रहे थे मॉनरेंस में न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनमें दोनों टाइप्स पाए जाते हैं, कुछ इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक हैं जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और कुछ हैं जो अपना बाहर के एनवायरनमेंट से अपना फूड विड्रॉ करते हैं जो हेटरोट्रॉफिक है। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और माइकोप्लाज्मा। सो ये एग्जांपल्स हैं। सम एग्जांपल्स आर शोन इन फिगर 7.1 के अंदर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। तो एनाबीना का दिया है आपको और बैक्टीरिया का दिया है। तो बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं कई सारे आपको फ्लैजेला दिखाई दे रहे हैं और एनाबीना के अंदर आपको हिड्रोसिस्ट और रेस्टिंग स्पोर दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया गया होता है और आपसे पूछा जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाया गया क्वेश्चन के अंदर, द ऑर्गेनिज्म विच हैज बीन शोन इन द फिगर, ये किस किंगडम से है, belongs to which kingdom, it belongs to which kingdom। तो आपको अगर पता होगा डायग्राम कि एनाबिना का है या बैक्टीरिया का है तो आप इसे आंसर कर पाएंगे कि ये किंगडम मोनेरा का। ओके, नाउ सेकंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा 7.3.2 प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस ग्रुप के अंदर कई प्रकार के यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर मूविंग अराउंड। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास अपेंडेजेस हैं, प्रॉपर अपेंडेजेस नहीं है। किस तरीके की अपेंडेजेस हैं, हेयर लाइक सीलिया है, बालों की तरह एक सीलिया जैसा है और विप लाइक फ्लैजेला है जो हेल्प करता है उसको मूवमेंट। सो ये अपेंडेजेस हैं उसके, अपेंडेजेस पर्टिकुलरली हाथ पैरों को कहते हैं, लेकिन इनके पास वो नहीं है क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हम पढ़ चुके हैं कि जो पहले के किंगडम्स होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव होंगे, उनका बॉडी जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा सिंपलर होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटी एडवांसमेंट के साथ साथ आएगी। तो प्रोटिस्टा के लेवल पर अपेंडेजेस में ये नहीं है कि हाथ पैर आ जाएंगे, अपेंडेजेस में यहाँ पर हेयर लाइक सीलिया और फ्लैजेला है जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करा रही है। और ये वाली चीज कहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, ये वाली चीज मोनेरा में प्रेजेंट नहीं थी। हाँ, बैक्टीरिया के अंदर एक दो फ्लैजेलास हैं और पर्टिकुलरली सभी मोनरेंस के अंदर वो नहीं मिल रहा था। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और यूनिसेल्युलर हैं, ये बात याद रखनी है। their mode of nutrition can be autotrophic or heterotrophic. Some examples are algae, diatoms and protozoans. So mode of nutrition isme bhi dono milte hain, autotrophic bhi milta hai aur heterotrophic bhi milta hai. अच्छा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें कौन शो करेगा? इसमें शो करेगा एल्गी, क्योंकि कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस शो करते हैं. बाकी रेस्ट जो दो और हैं वो है डायटम्स और प्रोटोजोअन्स. आप फिगर 7.2 में देखेंगे आपको पैरामीशियम दिया है, अमीबा दिया है और यूग्लीना दिया है. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ के. तो अभी जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रोटोजोअन्स के, तो ये भी पूछा जाता है कि नेम सम प्रोटोजोअन्स. और जब आप प्रोटोजोअन्स लिखेंगे या आपसे पूछा जाएगा प्रोटोजोअन्स कौन से होते हैं, तो आपको पैरामीशियम पता होना चाहिए, अमीबा पता होना चाहिए और यूग्लीना पता होना चाहिए. व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटोजोअन्स ये भी आप सोच रहे होंगे. सो दे आर कॉल्ड प्रोटोजोआ और प्रोटोजोअन्स बिकॉज ये एक इनफॉर्मल टर्म है जो कि यूज किया जाता है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स के लिए. अभी आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, जब आपने प्रोटोजोआ पढ़ा, सॉरी प्रोटिस्टा पढ़ा, तो आपने एक लाइन पढ़ी थी कि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज होता है प्रोटोजोआ या प्रोटोजोअन्स. ओके ये फ्री लिविंग है या फिर ये फ्री लिविंग है या तो ये पैरासिटिक है, ये दोनों फॉर्म्स में रह सकते हैं. फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक टिश्यूज पर. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपकी बुक में दिया है पैरामीशियम, उसके बाद अमीबा और उसके बाद आपको एक और दिया गया है यूग्लीना. तो ये तीन प्रोटोजोअन्स आपको दिए हैं, ठीक है. इनका भी डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, ड्रॉ करने को तो नहीं आता पर कई बारी आइडेंटिफाई करने को आता है. सो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है वो स्लिपर लाइक होता है, जैसे कि एक चप्पल होती है. सो ये भी कई बारी पूछा जाता है कि विच प्रोटोजोअन हैज द शेप सिमिलर टू स्लिपर. सो ये आपको याद रखना है. इसके लेबलिंग की गई है नेक्स्ट पेज पे, आप देखेंगे पेज नंबर 84 पर. तो लेबलिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई है ताकि आप स्ट्रक्चर लेवल पर उसको समझ सकें. सो जैसे आप पहला देखेंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर आप देखेंगे तो आपको काफी सारे सीलिया दिखाई दे रहे हैं. ये सीलिया इसके अंदर अपेंडेजेस का काम करते हैं, लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प कराते हैं. देन आप एक वाटर वैक्यूल देख रहे हैं जो कि स्टार लाइक है, उसके बाद सीलिया, देन मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस. सो दो टाइप्स के न्यूक्लियस हैं इसके पास, एक बड़ा न्यूक्लियस है मैक्रो और एक छोटा न्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस. उसके बाद आप जब नीचे देखेंगे तो एक ओरल ग्रूव आ रहा है, ये ओरल ग्रूव इसको फीडिंग में हेल्प करता है. फिर है साइटोसोम, साइटोसोम भी एक तरीके से जो फूड पाथ है उसी का ये पार्ट होता है. देन फूड वैक्यूल जिसके अंदर ये अपना फूड स्टोर करता है. फिर है साइटोफाइजी और देन वेस्ट, तो जहां से ये वेस्ट सिक्रीट करता है वो दिखाया है. तो ये स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का. नेक्स्ट आप देखेंगे अमीबा दिया है, अमीबा को भी आपको क्रॉस सेक्शन से दिखाया है ताकि आप समझ सकें. अच्छा जो अमीबा है वो एक इरेग्युलर बॉडी वाला होता है, इसकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. सो सबसे पहले आप देख सकते हैं लेयर्स दिखाई है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म. तो एक्टोप्लाज्म क्या है, वो सबसे बाहर वाली लेयर है, उसके बाद एंडोप्लाज्म है जो उसकी अंदर वाली लेयर है. फिर इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है बिकॉज ये एनर्जी सिंथेसाइज करता है सेल के अंदर. फिर आप देखेंगे एक सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस है बड़ा सा, उसके बाद कुछ क्रिस्टल्स हैं और कुछ फूड वैक्यूल्स हैं. इसके बाद अंदर आप देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दी गई है और फिर सूडोपोडियम आपको दिखाया. तो जब भी इसको फूड एंगल्फ करना होता है तो ये सूडोपोडियम की हेल्प से अपना फूड एंगल्फ करता है. सो ये स्ट्रक्चर हुआ अमीबा का. नेक्स्ट है आपका यूग्लीना. यूग्लीना आप देखेंगे, यूग्लीना का स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा सा, इसके पास फ्लैजेलम होता है, एक ही होता है इसके पास, इसीलिए सिंगुलर फ्लैजेलम है, और एक शॉर्ट फ्लैजेलम दूसरी साइड पर होता है. तो एक बड़ा सा फ्लैजेलम आपको दिख रहा होगा थ्रेड लाइक, और एक शॉर्ट फ्लैजेलम आपको दिखाई दे रहा है. आई स्पॉट इसके अंदर मिलता है. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आई नहीं है, जैसे ह्यूमन आई है या एनिमल आई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा एडवांस होती है. तो इसके पास सिर्फ एक आई स्पॉट मिलता है. आई स्पॉट मतलब वो पर्टिकुलरली आई नहीं है, आई स्पॉट है. देन फोटो रिसेप्टर इसके पास है आंखों के जो आई स्पॉट है उसके नीचे. देन है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट किस लिए है इसके पास, क्योंकि ये शो करता है फोटोसिंथेसिस. ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है जिसकी वजह से इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। देन आप देखेंगे एक न्यूक्लियोलस है और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सो ये हुए आपके प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट किंगडम इज फंजाई। 7.3.3 पेज नंबर 84। फंजाई किंगडम फंजाई। दीज आर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इसमें पर्टिकुलरली आपको मेंशन कर दिया कि ये हेटरोट्रॉफिक है, इनके पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। और ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बार बार ये डिफरेंस आ रहा है सेल लेवल पर कि यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है। अगर आपको याद ना हो तो एक बार हम बता देते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली हमने ये सेल चैप्टर में पढ़ लिया, लेकिन प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि बने होते हैं सेल से जिनके पास सेल न्यूक्लियस नहीं है, या फिर उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? इनके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ढका हुआ है, सेफ है, और इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, एज वेल एज इनके जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड है, वो भी एक मेम्ब्रेन से ढके हुए हैं। सो ये डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसी के आधार पर, इसी को बेस बनाकर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आपको ये याद होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक फंजाई। फंजाई हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मींस इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। वो बाहर के एनवायरमेंट से, बाहर के एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मेंटेन कर अपना फूड लेते हैं। इसके अलावा वो यूकैरियोटिक है, मींस उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, साथ के साथ उनके जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड है। दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। वो जो डिकेइंग यानी जो सड़ा हुआ जो फूड है, जो सड़ रहा है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, इस वजह से इन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है, या फिर वो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ। कुछ जो फंजाए हैं वो अपनी लाइफ के कुछ स्टेजेस में मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। दे हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। जो उनकी सेल वॉल्स हैं, सेल वॉल की बात आई यहाँ पर, कि जो सेल वॉल है वो एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर है, जिसे काइटिन CHITIN काइटिन कहा जाता है, उससे बनी। उसकी एग्जांपल्स हैं यीस्ट एंड मशरूम। क्या एग्जांपल्स हैं? यीस्ट और मशरूम। तो आप यीस्ट और मशरूम को आपने देखा होगा, मशरूम तो जरूर देखा होगा आपको, कई बार ये ट्रीज में लगा हुआ मिल जाता है, पुरानी मिट्टी पर लगा हुआ मिल जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? फंजाई के। नेक्स्ट आप फिगर 7.3 में देखेंगे, आपको कुछ फंजाई के एग्जाम्पल्स दिए हैं, डायग्राम्स हैं। एस्परगिलस, एस्परगिलस में भी काफी सारे स्पोर्स होते हैं। फिर है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम भी एक तरीके का फंजाई है। और नेक्स्ट है अगैरिकस, अगैरिकस इज अ टाइप ऑफ मशरूम, ठीक है। तो ये तीन आपको याद होने चाहिए कि ये तीनों बिलोंग करते हैं फंजाई किंगडम से, क्योंकि इनसे भी पूछा जाएगा आपको कि ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। सम फंगल स्पीशीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स विद ब्लू ग्रीन एल्गे। कुछ फंगल स्पीशीज कैसी हैं? वो परमानेंटली म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं, मतलब किसी पे डिपेंड होती हैं और उसके साथ रहती हैं, मींस उसके जो वाइटल फंक्शंस हैं उसके साथ साथ वो भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जिसका एग्जांपल है ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको साइनोबैक्टीरियम भी कहा जाता है। सच रिलेशनशिप्स आर सिम्बायोटिक, और इस तरीके की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। These symbiotic life forms are called lichens. इनके साथ जो symbiotic life form रहता है वो कौन है? Lichen. We have also seen lichens as the slow growing large colored patches on the bark of trees. तो trees की bark पे ज्यादातर ये lichen देखने को मिलती है। ये बहुत धीरे धीरे growth करती है कलर्ड पैचेस बन जाते हैं। कई बार देखेंगे तो रेनी सीजन के आसपास इस तरीके के पैचेस हमें पेड़ों की छाल पर मिलने लग जाते हैं। तो ये हैं लाइकेंस, और ये किसके साथ अपनी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो ये हुआ किंगडम फंजाई। लास्ट हमारा किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया है, जिसको अब हम नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।